एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में काफी हलचल मचाई है। ये है कैनेडियन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन की 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos।
हाँ, जीवन के 12 नियम, अराजकता का एक मारक। और ये किताब जरूरी इसलिए भी लगती है क्योंकि आजकल बहुत से लोग थोड़े खोया हुआ महसूस करते हैं।
बिल्कुल दिशाहीन, ऐसा लगता है कि चीजें कंट्रोल में नहीं है, भारी पड़ रही हैं।
सही, तो ये किताब इसी सवाल से शुरू होती है कि भाई इस उथल पुथल के बीच एक मीनिंगफुल, एक सार्थक जिंदगी कैसे जी जाए, अपनी भूमिका, अपना लक्ष्य वो कैसे ढूंढा जाए।
हाँ, और ये सिर्फ खुशी या आराम की बात नहीं करती, जोर इस पर है कि गहरे अर्थ कैसे मिले, उद्देश्य कैसे मिले, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
बिल्कुल, तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं।
हाँ जरूर, लेकिन नियमों पर जाने से पहले थोड़ा डॉक्टर पीटरसन के बारे में जानना भी जरूरी है ना।
हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ कोई सिर्फ लेखक या प्रोफेसर नहीं है। उनका जो बैकग्राउंड है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी का है।
टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस, हार्वर्ड में भी पढ़ाया है, और सबसे बड़ी बात, दशकों तक लोगों के साथ काम किया है, उनकी असल जिंदगी की मुश्किलों को समझा है।
सही, और उनकी सोच सिर्फ साइकोलॉजी तक ही नहीं रुकी, वो कई अलग अलग फील्ड से जोड़ते हैं, जैसे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी।
हाँ, कि हमारा बर्ताव लाखों साल के विकास से कैसे जुड़ा है।
बिल्कुल, फिर न्यूरोसाइंस दिमाग कैसे काम करता है, और यहाँ तक कि पुरानी कहानियां, मिथक, धार्मिक ग्रंथ, इन सब से वो इनसाइट्स लेते हैं।
अच्छा, तो ये चीज उनके नजरिए को थोड़ा अलग बनाती है।
हाँ, यही बात खास है। एक तरफ तो उनका वो प्रैक्टिकल अनुभव, लोगों की तकलीफों को करीब से देखना, और दूसरी तरफ ये अलग अलग ज्ञान क्षेत्रों का मेल। तो इससे होता यह है कि वो बड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काफी प्रैक्टिकल सलाह में बदल पाते हैं। सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है,
बल्कि क्यों करना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी समझाते हैं।
Exactly.
तो फिर ये किताब असल में कहती क्या है, इसका निचोड़ क्या है?
देखिए, मूल आइडिया यह है कि जिंदगी में केओस, अराजकता, परेशानियां, अनिश्चितता, दुख, ये सब तो रहेगा ही, ये जीवन का हिस्सा है।
इनसे बच नहीं सकते।
नहीं, लेकिन ऑर्डर, व्यवस्था, स्थिरता, मीनिंग, ये हम खुद बना सकते हैं।
कैसे?
पर्सनल जिम्मेदारी लेकर और कुछ बुनियादी उसूलों को अपनाकर।
अच्छा, तो ये खुशी ढूंढने से ज्यादा अर्थ ढूंढने पर जोर देती है।
हाँ बिल्कुल, पीटरसन का तर्क है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ पल भर की खुशियां, आराम नहीं होना चाहिए। असली चीज है मीनिंग, अर्थ खोजना।
और वो अर्थ कहां से आता है?
वो आता है जिम्मेदारियां उठाने से,
बिल्कुल,
मुश्किलों का सामना करने से,
जी,
किसी बड़े लक्ष्य के लिए कोशिश करने से। तो ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प टाइप किताब नहीं है।
हाँ, ये उससे ज्यादा गहरी है। ये पूछती है कि इस दुनिया में हमारी नैतिक भूमिका क्या हो सकती है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए।
सही का, ये हमें चैलेंज करती है कि हम आसान रास्ते ना चुने, शिकायतें करने के बजाय अपनी कमियों को देखें, उन्हें सुधारें।
दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलें।
बिल्कुल, ये पर्सनल एम्पावरमेंट की बात है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ।
तो ये जो 12 नियम है, ये असल में इस केओस के बीच रास्ता खोजने में, अपनी भूमिका समझने में कैसे मदद करते हैं? क्या हम कुछ खास नियमों पर बात करें?
हाँ, सारे 12 नियमों को एक एक करके देखने के बजाय शायद कुछ बड़े थीम्स के जरिए समझना बेहतर होगा।
हाँ,
जैसे पहला बड़ा थीम है पर्सनल जिम्मेदारी लेना।
ओके, व्यक्तिगत जिम्मेदारी।
इसकी शुरुआत होती है नियम 1 से।
सीधे खड़े हों, कंधे पीछे रखें, अब ये सुनने में सिर्फ फिजिकल लगता है। हाँ, जैसी बॉडी लैंग्वेज की बात हो।
है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। पीटरसन इसमें लॉबस्टर का उदाहरण देते हैं कि कैसे जो लॉबस्टर मुकाबला जीतता है उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है।
अच्छा।
हाँ, और उसके दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल भी बढ़ता है जो कॉन्फिडेंस से जुड़ा है। तो ये नियम कहता है कि जब आप फिजिकली दुनिया का सामना करने को तैयार दिखते हैं, सीधे खड़े होते हैं, तो ये अपने आप में जिम्मेदारी लेने का पहला कदम है।
ये एक तरह से दुनिया को सिग्नल देना है।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है नियम 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को पूरी तरह से व्यवस्थित करें।
अपना घर अपना जीवन।
हाँ, आपका मन, आपकी आदतें, आपके रिश्ते। पीटरसन का पॉइंट है कि दुनिया की बड़ी बड़ी बुराइयों पर बोलने से पहले जरा अपने जीवन की उथल पुथल तो ठीक करें,
अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, अपनी कमियां सुधारें।
ये हमारी पहली भूमिका है। असली बदलाव यहीं से शुरू होता है।
और फिर है नियम 2, खुद के साथ वैसा व्यवहार करें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जिसकी मदद करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये थोड़ा अजीब लगता है ना?
हाँ, सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, पर सोचिए, हम अक्सर दूसरों का या अपने पेट्स का ख्याल ज्यादा अच्छे से रखते हैं।
सही बात है, अपनी दवाई टाइम पे लेना भूल जाएंगे पर पेट को खिलाना नहीं भूलते।
हाँ, तो पीटरसन कहते हैं कि इसके पीछे शायद खुद को कम आंकना होता है, सेल्फ वर्थ की कमी। ये नियम कहता है कि अपनी देखभाल करना ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये एक ड्यूटी है।
अपनी क्षमता को बढ़ाना, सेहत का ध्यान रखना, ताकि हम दुनिया में अपना रोल निभा सकें।
बिल्कुल, ये भी पर्सनल जिम्मेदारी का ही हिस्सा है।
अच्छा, तो ये हुआ पहला थीम, और दूसरा?
दूसरा बड़ा थीम है दुनिया और दूसरों के साथ सही ढंग से कैसे डील करें।
ओके, समाज में, रिश्तों में।
हाँ, इसमें सबसे पहले आता है नियम 4, अपनी तुलना कल के अपने आप से करें, न कि आज के किसी और से।
ओ, ये तो बहुत ही जरूरी है आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो।
हाँ बिल्कुल, हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है और हम उसे देखकर या तो दुखी होते हैं या जलते हैं।
सही,
पीटरसन कहते हैं ये तुलना ही गलत है, क्योंकि हम उनकी बाहरी चमक को अपनी अंदरूनी सच्चाई से तौलते हैं। वो कहते हैं असली पैमाना ये है, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हुआ हुई हूँ।
फोकस अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए।
बस यही टिकाऊ मोटिवेशन देता है। और इसी तरह दूसरों से सीखते समय भी नियम 9 कहता है, मान लें कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वो कुछ ऐसा जान सकता है जो आप नहीं जानते।
सीखने की कला,
हाँ
हम्बल होना।
हाँ, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। बातचीत का मकसद बहस जीतना नहीं बल्कि सच के करीब पहुंचना होना चाहिए, दूसरों से सीखने को तैयार रहना।
इससे हमारी अपनी समझ भी तो बेहतर होती है।
बिल्कुल, और जब हम अपनी बात रखें तब नियम 10, अपनी वाणी में सटीक रहें।
शब्दों का सही इस्तेमाल।
हाँ, भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, वो हमारी रियलिटी को शेप भी करती है। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स या गोल्स को गोलमोल रखते हैं तो वो और बड़ी लगती हैं।
लेकिन जब साफ शब्दों में कहते हैं
तो उन्हें समझना और उन पर काम करना आसान हो जाता है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है लक्ष्य पाने के लिए।
और इसमें वो दोस्तों वाला नियम भी फिट होता है, नियम 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपका भला चाहते हों।
हाँ बिल्कुल, हमारे आसपास के लोग हम पर बहुत असर डालते हैं, तो ऐसे दोस्त चुनें जो आपको ऊपर उठाएं, आपको चैलेंज करें अच्छे तरीके से,
न कि वो जो आपको नीचे खींचे या आपकी बुरी आदतों को बढ़ावा दें।
सही, अच्छा सोशल सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है।
ठीक है, और तीसरा मुख्य विषय?
तीसरा और शायद सबसे गहरा विषय है, मुश्किलों और पीड़ा के बीच अर्थ कैसे खोजें।
जीवन में दुख तो आएगा ही, उसका सामना कैसे करें?
हाँ, यहाँ नियम 7 बहुत अहम है, जो सार्थक है उसका पीछा करें, न कि जो सुविधाजनक है।
मीनिंगफुल वर्सेस एक्सपीरियंट।
एग्जैक्टली, आसान रास्ता, शॉर्टकट, झूठ, टालमटोल, ये सब टेम्पररी आराम दे सकते हैं, पर इनसे जिंदगी में गहरा अर्थ नहीं आता।
सार्थक जीवन में तो मेहनत लगती है, त्याग, अनुशासन।
हाँ, पीटरसन यहाँ बाइबल की केन और एबल की कहानी का जिक्र करते हैं कि आधे अधूरे मन से किया गया काम स्वीकार नहीं होता। मीनिंग तब मिलता है जब हम किसी बड़े सार्थक लक्ष्य के लिए अपनी मर्जी से मुश्किल उठाते हैं।
Voluntarily accepting the burden.
Yes. और इस रास्ते पर चलने के लिए नियम 8, सच बोले या कम से कम झूठ ना बोले।
सच्चाई का रास्ता,
ये बहुत जरूरी है। झूठ चाहे दूसरों से बोला जाए या खुद से, वो हमें रियलिटी से काट देता है, क्योस पैदा करता है। सच बोलना चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे, हमें जमीन पर रखता है,
प्रॉब्लम्स को समझने और सुलझाने में मदद करता है।
बिल्कुल, सच्चाई एक कंपास की तरह है जो हमें मीनिंग की तरफ गाइड करती है।
और फिर वो बिल्ली वाला नियम, नियम 12, जब सड़क पर बिल्ली मिले तो उसे सहलाएं। ये थोड़ा अलग सा लगता है।
हाँ, ये एक मेटाफर है, एक रूपक। मतलब ये है कि जिंदगी की बड़ी मुश्किलों और संघर्षों के बीच भी सुंदरता के, कनेक्शन के, अच्छाई के छोटे छोटे पल होते हैं।
उन्हें नोटिस करना,
उन्हें अप्रिशिएट करना,
हाँ,
उन्हें पहचानना और संजोना, ये हमें मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। ये याद दिलाता है कि बड़े लक्ष्यों का पीछा करते हुए भी जिंदगी की छोटी खुशियों को नजरअंदाज ना करें।
बड़ी तस्वीर के साथ छोटी चीजों का महत्व।
बिल्कुल।
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या मुख्य संदेश निकलते हैं इस किताब से?
देखिए, मेरे हिसाब से पहला और सबसे बड़ा संदेश है व्यक्तिगत जिम्मेदारी का। मीनिंगफुल लाइफ और अपना रोल निभाने के लिए ये जरूरी है। बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है,
खुद से।
दूसरा, ऑगर और क्योस का कॉन्सेप्ट। जिंदगी इन दोनों के बीच का बैलेंस है, हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए और चैलेंज भी,
और मीनिंग इन दोनों के बीच संतुलन साधने में है, क्योस का सामना करने में।
सही। तीसरा, पीड़ा तो है पर उसे अर्थ दिया जा सकता है। हम अपनी मुश्किलों को जिम्मेदारी और लक्ष्य के जरिए मीनिंग में बदल सकते हैं।
मतलब दुख को सहने लायक बनाना।
हाँ, जब हम उसे स्वेच्छा से किसी बड़े मकसद के लिए चुनते हैं। चौथा, सच और सटीक भाषा का महत्व। ये रियलिटी से कनेक्ट करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूरी है।
और पांचवा,
योग्यता या कॉम्पिटेंस पर फोकस। समाज में हायरार्कीज होती हैं, उनमें अपनी जगह बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी स्किल्स बढ़ाना, वैल्यूएबल बनना,
बजाय के सिर्फ शिकायत करने के।
ये योग्यता ही हमें अपना रोल इफेक्टिवली निभाने में मदद करती है।
तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें इन बातों को?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। शुरुआत छोटे ठोस कदमों से करनी होगी।
जैसे
पर्सनल लाइफ में अपना सोने जागने का टाइम ठीक करना, रोज थोड़ा सा ही सही पर हिलना डुलना, एक्सरसाइज करना, या सिर्फ अपना कमरा, अपनी डेस्क साफ रखना।
ये छोटी चीजें, ये नियम 1 और 6 से जुड़ती हैं।
हाँ, ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती हैं और जिम्मेदारी का एहसास भी कराती हैं।
और कामकाज की जगह पर
वहां अपनी स्किल्स पर काम करना, मुश्किल काम से बचना नहीं, अपनी गलतियों को मानना और अपनी बात साफ साफ कहना, ये नियम 6, 7, 8, 10 सब यहाँ लागू होते हैं।
रिश्तों में भी ये बातें लागू होंगी।
बिल्कुल, मुश्किल बातचीत करने से कतराना नहीं, नियम 8, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखना और ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको बेहतर बनने में मदद करें, नियम 3।
और मेंटल हेल्थ के लिए क्या सुझाव है?
मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉब्लम से भागने के बजाय उनका सामना करने की कोशिश करना, नियम 1 और 7। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर अपनी क्षमता बढ़ाना, नियम 4। धीरे धीरे मुश्किलों का सामना करके रेजिलियंस बनाना।
मतलब फोकस उन चीजों पर रखना जो हमारे कंट्रोल में है।
एग्जैक्टली, और छोटे लगातार कदम उठाना।
तो आपके लिए इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी में अर्थ कोई बनी बनाई चीज नहीं है जिसे ढूंढना है, ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें बनाना पड़ता है।
एक्टिवली।
हाँ, एक्टिवली, जिम्मेदारी लेकर, मुश्किलों का सामना करके और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करके। हमें अपनी कहानी का हीरो बनना है, सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं।
और मेरे लिए ये बात बहुत स्ट्राइकिंग रही कि छोटी छोटी चीजें कितना मायने रखती हैं। सीधे खड़े होना, सच बोलना, अपनी तुलना कल से करना, ये छोटे जानबूझकर किए गए काम असल में बड़े बदलाव ला सकते हैं।
हाँ, वो कंपाउंड इफेक्ट की तरह।
बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को शेप देने में असहाय नहीं हैं, हमारे पास ताकत है अगर हम जिम्मेदारी लें।
सही कहा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्व फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।